ఓకే, సో సెవెంత్ క్యాంటో 11th చాప్టర్ 8th వర్స్ కట్టాం. ఆర్ దేవర్షి నారద్ ఇస్ శ్లోక్ కే వక్త హై. ఆర్ దేవర్షి నారద్ ఇస్ శ్లోక్ మే ఇస్ శ్లోక్ మే నిర్ణామ్ అయం పరో ధర్మ. నిర్ణామ్ మతలబ్ హోతా హై సబ్ జీవో కే లియే పరమ ధర్మ బతా రే. డ్యూటీస్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్, హర్ వ్యక్తి కో క్యా కర్నా చాహియే. సో ఇస్సే పహలే దేవర్షి నారద్ నే 30 వర్ణాశ్రమ ధర్మ కి చర్చా కీ హై. ఇస్సే పహలే ఇస్కే బాద్ చాప్టర్స్ మే కరేంగే. ఆర్ వర్ణాశ్రమ ధర్మ కి చర్చా కర్కే అలగ్ అలగ్ వర్ణాశ్రమ ధర్మో మే అలగ్ అలగ్ వర్ణో ఆర్ ఆశ్రమో కి అలగ్ అలగ్ డ్యూటీస్ హై, తో ఉస్కో విశేష ధర్మ కహతే హై. మగర్ జో హర్ వ్యక్తి కో కర్నా చాహియే ఉస్కో కహతే హై సాధారణ ధర్మ, తో సబ్ కే లియే. ప్రభుపాద్ పాపట్ మే లిఖ రహే హై, చాహే హిందూ హో, చాహే ముస్లిం హో, చాహే క్రిస్టియన్ హో, భాగవతం ఏ యూనివర్సల్ రిలీజన్ ఎస్టాబ్లిష్ కర్ రహీ హై. జహాన్ యే చీజే మిలేంగీ వహాన్ ధర్మ హై, జహాన్ యే గుణ నహీ హై వహాన్ ధర్మ నహీ హై. చాహే వో అప్నే ఆప్ కో కిసీ భీ फैबुलस नाम से पुकारें, इट डजेंट मैटर. अब भगवत पापट में लिख रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, ये गुण या तो उसके धर्म पालन करने से प्रकट होने चाहिए, या प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर रिलीजन में इन गुणों की प्रशंसा तो की गई है, भक्तों में अपने आप प्रकट हो जाते हैं गुण. इसलिए अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो धर्मशास्त्रों में कोई स्पेसिफिक धर्म की चर्चा नहीं की गई है, ये नाम ही नहीं आते, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन या ऐसा कुछ नाम नहीं है. धर्मशास्त्रों में इन गुणों की चर्चा होती है, इन क्वालिटीज की चर्चा होती है. सो क्या क्या क्वालिटीज है. इनफैक्ट मैंने इसलिए श्लोक लिया था क्योंकि प्रभुपाद ने अपने पॉपट में इन गुणों को एक्सप्लेन नहीं किया है ज्यादा, और ट्रांसलेशन में प्रभुपाद भी इन क्वालिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. इसकी ट्रांसलेशन में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दीज आर जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ट्रूथफुलनेस, मर्सी, ऑस्टेरिटी, टॉलरेंस, बस इतना लिख रहे हैं. मगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद को स्पेशल मीनिंग दे रहे हैं इन क्वालिटीज का, तो मैं इसलिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग पर फोकस करना चाहता हूँ कि प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं हर चीज को प्रॉपरली और बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो इसलिए कभी कभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. यू हैव टू रीड केयरफुली प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं. सो लेट्स सी प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं श्लोकों में. ओम अज्ञानाते मरिंदस्य ज्ञानांजन शलाका चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः. प्रभुपाद की जय. सो प्रभुपाद ऑफकोर्स सत्यम का मीनिंग लिख रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में कर दूंगा. स्पीकिंग द ट्रूथ विदाउट डिस्टॉर्शन और डेविएशन. सत्य मतलब कि बोलना चाहिए बिना, कोई भी वाक्य बोलना चाहिए, कोई भी शब्द बोलना चाहिए बिना डिस्टॉर्शन और डेविएशन के. डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, अपभ्रंश, बिना तोड़े मरोड़े, बिना तोड़ मरोड़ के चीज को बोलना चाहिए, मतलब बिना इंटरप्रिटेशन के एज इट इज. क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है हम इंटरप्रेट कर रहे हो, मगर हो सकता है हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हो. हमारे लेवल पे हमें वो चीज़ वैसे समझ आ रही है, मगर एक्चुअली हायर लेवल पे वो चीज़ वैसे ही है. जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे तो प्रभुपाद ने पूछा, सो वॉट इज होली नेम. तो एक डिवोटी ने कहा कि होली नेम इज लाइक अ कैप्सूल. सो कैप्सूल की तरह जिसमें भगवान विद्यमान है. प्रभुपाद ने कहा नो, प्रभुपाद ने कहा होली नेम इज गॉड हिमसेल्फ. प्रभुपाद ने कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया, सुकाट दिया. ऑफकोर्स भक्ति संत ऐसा कहते हैं कि भगवान का नाम कैप्सूल की तरह है, तो उसने पढ़ा होगा कहीं. सो प्रभुपाद ने वहीं कट कर दिया. प्रभुपाद ने कहा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात कृष्ण है भगवान का नाम. कोई ऐसे नहीं कि भगवान के नाम के अंदर कृष्ण है. सो ये हमारे रियलाइजेशन लेवल पे लगेगा यस हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जब कृष्ण बोलेंगे तो उसके अंदर से कृष्ण प्रकट होंगे, मगर ऐसा नहीं है, कृष्ण का नाम ही कृष्ण है। सो फर्क पड़ेगा रियलाइजेशन से नहीं वो। सो वो भक्ति संत सरस्वती महाराज की अगर उसने पढ़ी होगी कोटेशन ऐसी, तो वो उसको अच्छी तरह समझ भी नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं, अब उसको मिस इंटरप्रेट कर गया। सो इसलिए सत्य मतलब होता है बिना डिस्टॉर्शन के, बिना इंटरप्रिटेशन के, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में यस्य देवे पराभक्तिर तथा यथा देवे तथा गुरु, कि जिस जो गुरु की और शास्त्रों की इंस्ट्रक्शंस एज इट इज ले लेता है उसको परफेक्शन मिल जाती है। और इनफैक्ट अगर आप मिस्टिक रेल में जाओगे, ऐसे जो मिस्टिक्स नहीं होते योगीज और ये तांत्रिक्स होते हैं, अगर आप उनके पास कभी जाओ, और तो मैं गया था कई तांत्रिकों के पास पहले कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले, तो उनकी बात कुछ भी समझ नहीं आएगी। वो बोलेंगे ओम ह्रीम श्रीम ये चैंट करते रहो। तो टी एम महर्षि महेश योगी वॉज ऑल्सो लाइक अ तांत्रिक, वो भी बीच मंत्र देते थे। तो आप कहोगे ये क्या है, श्रीम क्रीम ह्रीम, उनको समझ नहीं आएगा। बट देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट, आप उसको इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते। तो सत्य मतलब बिना डिस्टॉर्शन के बोलना। और प्रभुपाद एक और चीज लिख रहे हैं, बिना डेविएशन के। डेविएशन और डिस्टॉर्शन में फर्क है। डेविएशन मतलब कि आपने सत्य छोड़ के कुछ और बोलना शुरू कर दिया, मिस इंटरप्रेट नहीं किया, आपने छोड़ ही दिया और कुछ और ही अपने मन से कुछ भी बना के कुछ और ही पॉइंट बोलने लग रहे, उसे कहते हैं डेविएशन। इस्कॉन में शुरू में अगर आप इस्कॉन की हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत तगड़ी डेविएशन आ गई थी। मतलब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था इस्कॉन के अर्ली डेज में कि प्रभुपाद इस कृष्ण। सो प्रभुपाद को, आई थिंक उस टाइम जापान में थे, कहां थे, उसको इन्फॉर्मेशन बोली कि प्रभुपाद यू हैव बिकम गॉड, अमेरिका में शुरू हो गया है मूवमेंट आपके इस्कॉन में। प्रभुपाद ने कहा व्हाट नॉनसेंस। प्रभुपाद ने उसी टाइम एक्शन लिए थे, मार कृष्णदास को बोला, प्रभुपाद ने बोला कि अगर मुझे तुम कृष्ण कहोगे तो अभी मैं मूवमेंट छोड़ दूंगा और वापस इंडिया चला जाऊंगा, इस्कॉन इज क्लोज्ड फिनिश। तीन सन्यासी इसको निकाल दिया था। सो देन वो प्रोपोगेट कर रहे थे, सस्पेंड कर दिया था, निकाला था नहीं, सस्पेंड। सो दैट इसको कहते हैं डिविएशन। ये पॉइंट कहीं भी नहीं है, ये हवा से निकाला गया है, ये डिविएट कर दिया गया है। जैसे हाँ, तो उससे उन्होंने एक अलग पॉइंट निकाल लिया कि गुरु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, तो उन्होंने कहा गुरु इज गॉड। जैसे इस्कॉन में भी अब आजकल डिविएशंस आ रही हैं, तो महाराज तो बात कर ही रहे हैं, बहुत सारे डिविएशंस हैं। सो डिविएशन मतलब इमेजिनेशन, डिस्टॉर्शन मतलब इंटरप्रिटेशन, गलत इंटरप्रिटेशन करना किसी चीज की। तो सत्य, मगर सत्य बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों से भी और अपने आप से भी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सत्य एक बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअली सत्य को वेदों में कहते हैं रितम, ये इसका नाम नहीं है रितंबरा, वो यही नाम है, रितंबरा नहीं है वो नाम, यही है। रितम मतलब होता है ट्रुथ, एसेंस, ये शब्द वेदों में आ रहा है, रितम अनरितम। सो इससे उसका नाम बना रितंबरा, हु इज फुल ऑफ ट्रुथ। सो सत्य का मतलब रितम भी होता है, सत्य का मतलब रियलिटी भी होता है, भी रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है। और अगर हम दूसरों से सत्य बोल रहे हैं तो अपने से भी सत्य बोलना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने आप से ट्रुथफुल होना चाहिए, मगर वो होना बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल है। अपने आप से सच बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने आप से सच नहीं बोलते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे सच बोले, मगर अपने आप से सच नहीं बोलते। हम ये सच नहीं बोलते अपने आप से कि मैं डिवोटी नहीं हूं, हम ये सच नहीं बोलते अपने आप से कि मुझे कोई भी रियलाइजेशन नहीं है, हम ये सच नहीं बोलते अपने आप से कि मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, मगर मैं पूरी दुनिया में ऐलान कर रहा हूं कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। सो वी आर नॉट स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ ट्रुथ। सो जो ट्रुथ बोलेगा वो अपने आप हम्बल बन जाएगा। वो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने आप से सच बोलने की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी नेचर बिना डिस्टॉर्ट की एक्सेप्ट करो। हम अपनी नेचर को डिस्टॉर्ट करते हैं, नहीं डिस्टॉर्ट करके हम अच्छी बना देते हैं, होती गंदी है, बना देते अच्छी हैं हम, यस आई एम ओके, आई एम गुड। और अपने बारे में डिविएट करके सोचने लगते हैं, आई एम कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा. आप सब कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू एक्सेप्ट आपके लिमिट्स क्या है. प्रभुपाद अपने लेटर में लिख रहे हैं एक कि रिकॉग्नाइज योर लिमिट्स और उसके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भगवान को, भगवान की सर्विस करो. इसको कह नहीं सकते. ओके, दया क्या है? सिंपैथी टू एवरीवन सफरिंग. दूसरी क्वालिटी है जनरल लोगों के लिए, सबके लिए प्रैक्टिस करने की क्वालिटी है दया. दया मतलब होता है सिंपैथी टू एवरीवन सफरिंग. सिंपैथी, प्रभुपाद ऐसे सिंपैथी लिख रहे हैं. सिंपैथी मतलब एम्पैथी भी होता है. प्रभुपाद ने कई बार वो भी वर्ड यूज किया है. एम्पैथी मतलब इमोशंस, मतलब दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना, यही दया है ना एक्चुअली रियलिटी में. सो इनफैक्ट वैष्णव समाज में ये क्वालिटी बहुत जरूरी है. कॉर्पोरेट कल्चर में दया नहीं होती. नहीं, वहां तो क्रुएलिटी होती है. नहीं, वहां पे तो एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं. 20 साल बाद भी अगर उसमें कुछ अगर मिस्टेक कर दी तो फायर. तो वैष्णव समाज में बहुत बड़ी क्वालिटी है दया, क्योंकि दया नहीं होगी तो आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते. आप दूसरों की सफरिंग्स को समझ नहीं सकते. हो सकता है उसके लिए जो सफरिंग है वो आपके लिए नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा होता ही है. तो आप कहोगे यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है. वेल, आपके लिए छोटी सी है मगर हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ी हो. ऐसे अब हमारे लिए चाय छोड़ना मतलब छोटी सी क्या, मतलब नेग्लिजेबल चीज है. तो दूसरे से कह सकते हैं व्हाट नॉनसेंस, यू नो चाय नहीं छोड़ सकता. वेल, ही इज नॉट नॉनसेंस, यू आर नॉनसेंस, बिकॉज आप अच्छे टीचर नहीं हो, आप में दया नहीं है. दया मतलब आप उसकी दया, दया करने के लिए उसकी पोजीशन में जाना पड़ता है. सिंपैथी टू एवरीवन सफरिंग, किसी की, किसी को सिंपैथी दिखाने के लिए उसकी पोजीशन में जाना पड़ता है, वरना आप सिंपैथी नहीं दिखा सकते. इसलिए वैष्णव समाज में प्रैक्टिकल मतलब दया का हो गया कि टू लोगों को गाइड करना उनकी पोजीशन में जाकर समझ के. अदरवाइज आप गाइड नहीं कर पाओगे. अदरवाइज हम चिल्लाते रहेंगे, डांटते रहेंगे और अननेसेसरी दूसरों को बोलते रहेंगे हम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो नए भक्त हैं उनकी अपनी सफरिंग्स हैं, जो एडवांस डिवोटीज हैं उनकी अपनी सफरिंग्स हैं. सो दया करने के लिए बहुत मैच्योर होना पड़ता है. यू हैव टू उसकी, दूसरे व्यक्ति की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है और ये समझना पड़ता है कि एक्चुअली वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी पोजीशन में. ऑल्दो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज हो, इसलिए दयावान, इसलिए महान संत दया करते हैं. ऐसे प्रभुपाद, प्रभुपाद ने हमने कितनी बार सुना है प्रभुपाद बस स्टैंड पे खड़े हुए लोगों को देख के रो रहे हैं. वो क्यों रो रहे हैं? हम लोग तो बोलेंगे कम ऑन कितने नॉनसेंस लोग हैं, भोगी लोग है भी भोगी, बट प्रभुपाद दया कर सकते हैं क्योंकि प्रभुपाद उनकी पोजीशन पर जाकर सोच रहे हैं कि वेल वो सफा कर रहे हैं. ओके, तपह. तपह क्या है? ऑस्टेरिटीज. अब प्रभुपाद इसमें इंटरेस्टिंगली लिख रहे हैं, एक्चुअली सारे आचार्य अपनी कमेंट्री में तपह को इसी तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं. सच एज ऑब्जर्विंग फास्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ ऑन डे ऑफ एकादशी. सो वैष्णविज्म में तपस्या एकादशी है, मतलब ये प्रभुपाद की अपनी कॉन्कॉक्शन नहीं है. अगर आप जितने भी कमेंट्री पढ़ोगे, विश्वनाथ जी, भगवत स्वामी, सब तपस्या को इसी तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं. भक्ति में इतनी तपस्या, एकादशी करना, और प्रभुपाद ने भी ऐड किया सुबह जल्दी उठना. यार प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी लिखा है कि टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर टू फॉरगेट हिम. बट दैट्स थ्योरी, वो प्रिंसिपल है. थ्योरी तो नहीं कहेंगे, वो प्रिंसिपल है. बट प्रैक्टिकल एक्शन, ये एकादशी करना, सुबह जल्दी उठना. और प्रभुपाद ने कई बार ये भी लिखा है प्रीचिंग इज बेस्ट ऑस्टेरिटी, प्रचार करना. तो भक्ति की तपस्या बिल्कुल अलग है, तपस्वियों की तपस्या बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट चलता है. मैं सुबह चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा था. चैतन्य महाप्रभु अंत्यलीला के 3rd अध्याय में बता रहे हैं, तपस्या की बात कर रहे हैं. तो चैतन्य महाप्रभु अपने एक्सटेटिकल मूड में और उसमें वो अपने आप को तपस्वी से कंपेयर कर रहे हैं, अपने माइंड को, कि मेरा मन तपस्वी बन चुका है. तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण का माधुर्य सुनकर मेरा मन अपना घर छोड़ के वृंदावन चला गया है। घर मतलब ये शरीर, अपने शिष्यों के साथ, शिष्य मतलब 10 इंद्रियां। सो मन अब मेरे शिष्य, अपने शिष्यों को लेके वृंदावन चला गया है, शरीर को छोड़ दिया, तपस्वी बन गया है। सो वेरी नाइस एनालॉजी, आप जाके पढ़ोगे 3rd अध्याय में, तो मन को तपस्वी से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस मन ने तो तपस्वी कुंडल नहीं पहनते, वो छल्ला नहीं पहनते ऐसे, उदासीन संप्रदाय में यहाँ पर तो बड़ा सा, तो कहते हैं कि मेरे मन ने वो एक छल्ला पहन लिया है जो कि बहुत सुंदर है, बहुत प्योर है, और वो क्या है, वो भगवान कृष्ण के गुणों के समान बहुत ही निर्मल है। और मेरे मन रूपी तपस्वी ने फटे हुए कपड़े पहने त्याग के, कि भगवान के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए, उस सैक्रिफाइस के कपड़े पहन लिए। मेरे मन उस तपस्वी ने वो भी पहनते हैं, टर्बन भी पहनते हैं ना तपस्वी, ऊपर बांधते हैं। तो मेरे मन ने दीनता का टर्बन पहना हुआ है और हाथ में खाली वो क्या कहते हैं लेके घूमते नहीं, बैसल बैसल लेके घूमते हैं तपस्वी लोग भीख मांगने, और भिखारी बन गया मेरा मन, क्योंकि प्रेम की भीख मांग रहा है हर जगह, मगर कहीं से मिल नहीं रही, भिक्षा ही नहीं मिल रही, इसलिए कमजोर हो गए, इसलिए तपस्वी कमजोर होते नहीं। वेरी नाइस एनालॉजी। तो तपस्या इसी मैं बता रहा हूँ कि तपस्या प्रैक्टिकल लेवल पे भी भक्ति में अलग है, और मूड के लेवल पे भी तपस्या का मीनिंग बिल्कुल अलग है भक्ति में। भक्ति का राज्य ही अलग है, भक्ति की अंडरस्टैंडिंग ही अलग है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है तपस्वी भी अधिको योगी, तपस्वी से भी ज्यादा बड़ा योगी है कौन सा योगी, डिवोटी, भक्ति योगी, क्योंकि भक्त नेचुरली तपस्वी बन जाता है, मगर तपस्वी तपस्वी बनने की कोशिश कर रहा है और फिर भी शायद नहीं बन पाएगा, ढोंगी बन जाएगा। सो दोनों लेवल पे बिल्कुल अलग है तपस्या। हम इंटरेस्टेड नहीं है खाना कम करने में, खाना ज्यादा करने में, या घर छोड़ने में, घर नहीं छोड़ने में, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो नेचुरली खाना कम हो जाए तो बहुत अच्छा है, कोई खराब ही नहीं है। नेचुरली घर छूट जाए तो बहुत ही अच्छा है, झंझट ही छूट गया, बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी तपस्या इज अ डिफरेंट फॉर्म, इसलिए प्रभुपाद तपस्या इस तरह लिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद तो ठीक है तपस्या को अपने मन से डिस्क्राइब कर रहे हैं, एकादशी करना महीने में 2 बार, मगर प्रैक्टिकली सारे आचार्य ऐसे लिख रहे हैं। इसमें कोई प्रभुपाद ने कंकॉक्शन नहीं की है कि तपस्या बस इतनी है, सुबह मंगल आरती में उठना, एकादशी करना, ये वाव लेना कि मैं भगवान को भोग लगाए कुछ भी गले से नीचे नहीं जाने दूंगा, ये तपस्या है। शौचम मतलब क्लीननेस, बेदिंग रेगुलरली एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, 2 बार कौन नहाता है। वैसे शास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए 1 बार नहाना लिखा है, क्योंकि उसको टाइम नहीं होता, सेवाएं होती है ना तो टाइम नहीं है। गृहस्थों के लिए 2 बार लिखा है मस्ट, एक सुबह नहा के जाए और जब ड्यूटी से आए तो एक बार दोबारा बाथ लेना चाहिए, और कपड़े छोड़ के फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए आइडियली। 2 बार बाद कंपलसरी है गृहस्थों के लिए, सन्यासियों के लिए 3 बार है, 3 times बेहतर है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। मैं सोच रहा था क्यों 3 बार है, प्रॉब्ली खाली पड़े रहते हैं शायद इसलिए, पता नहीं क्या है। पता नहीं पहले जमाने में खाली है तो भैया 3 बार ना हो, मगर ऐसा नहीं है ऑफकोर्स, 3 times बाद, क्योंकि 3 बार उनकी प्रैक्टिसेस होती है, नहीं संध्या होती है, वंदन, एलैबोरेट प्रोसीजर फॉलो करते हैं सन्यासी, सो 3 times बात है। सो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे मॉर्निंग इवनिंग, एटलीस्ट वंस अ डे। सो ये शौचम है, क्लीनिनेस, और ये एक्सटर्नल, इंटरनल क्लीनिनेस है, रिमेंबरिंग टू चैंट होली नेम ऑफ गॉड, इंटरनल क्लीनिनेस होली नेम है। अब ये भी प्रभुपाद आपको लगेगा ये तो फॉरनर्स के लिए लिखा है प्रभुपाद ने, नहाना मगर एक्चुअली नहीं है, आचार्य भी ऐसे लिख रहे हैं सारे नहाना। तो प्रभुपाद कॉन्कॉक्शन नहीं कर रहे अपने माइंड से कि वेस्टर्नर्स के लिए प्रभुपाद ने कम कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कई जगह प्रभुपाद ने वेस्टर्नर्स के लिए लिखा है, जैसे चैतन्य चैतन्य प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमने 64 rounds से 16 rounds कर दिए क्योंकि वेस्टर्न लोग 64 rounds डेली नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम ये चीज नहाना सुबह शाम, ये आचार्य लिख रहे हैं, सारे आचार्य कमेंट्री में लिख रहे हैं, क्लीनलीनेस इतनी है बस. ऑफ कोर्स उसके बाद ये तो बॉडी क्लीनलीनेस है, टेंपल की क्लीनलीनेस, किचन की क्लीनलीनेस और माइंड की क्लीनलीनेस, चैंटिंग होली नेम्स ऑफ गॉड. तितिक्षा, तितिक्षा मतलब टॉलरेशन, बींग अनएजिटेटेड बाय सीजनल चेंजेस. सर्दियों गर्मियों उससे माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, टॉलरेट कर लो. ठीक है, टॉलरेट कर लो. टॉलरेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं निकालो और आपके हाथ पांव खराब होगा सर्दी से, वो मतलब ये भी नहीं है कि मैं टॉलरेट कर रहा हूँ. ऐसे प्रभुपाल एक्चुअली वृंदावन में एक डिवोटी था, उसने वो क्या कर रहा था, वो ठंड में काफ़ी उसको ठंड लग रही थी, तो सिंपल खा रहा था और ठंड वंड लग रही थी, तो उसके बॉडी बॉडी बहुत पतली हो गई और बीमार होने लगा. तो डिवोटीज ने कहा कि ठंड में देखो प्रभुपाल ऐसा हो गया, तो प्रभुपाल ने बुलाया, मैंने क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा प्रभुपाल आपने लिखा है कि टॉलरेट करना चाहिए सीजनल चेंजेस को, तो मैं टॉलरेट कर रहा हूँ. प्रभुपाल ने कहा नॉन सेंस, प्रभुपाल ने कहा घी खाओ और बॉडी सही करो, इसको टॉलरेंस थोड़े ना कहते हैं, ये टॉलरेशन ही नॉन सेंस है. क्योंकि टॉलरेट करने का मतलब ये नहीं है कि अब भगवान की चीज को खराब कर दो, ये भगवान का इंस्ट्रूमेंट है ना, मैं टॉलरेट कर रहा हूं भगवान की चीज को खराब कर रहा हूं, इसका कोई मतलब है. टॉलरेट आप करो मगर भगवान की चीज को खराब नहीं कर सकते, वो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं. इसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु रोज डेली ड्यूटीज करते थे, रोज प्रसादम कर लेते थे, कैसे, अपने स्वभाव से, बाय हिज प्रैक्टिस, बाय हिज हैबिट. सो ठंड और गर्मी हम टॉलरेट करते हैं, टॉलरेट मतलब हमारा माइंड एजिटेट नहीं होता. टॉलरेट का मतलब है कि माइंड से हम भगवान को भूलते नहीं सर्दी और गर्मी से, मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, आप सर्दी में आप गर्म कर लो, गर्मी में आप थोड़ा ठंडा कर सकते हो, दैट्स ओके. बट अगर आप, अगर गर्मी में आपको ठंडी चीज नहीं मिल रही तो इतना माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि भगवान को भूल जाओ, दैट शुड नॉट बी द केस. इच्छा, इच्छा क्या होता है, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड एंड बैड. इच्छा मतलब देखना, अच्छे और बुरे में डिस्क्रिमिनेशन कैसे कहेंगे, अच्छे और बुरे में नहीं, भेद तो गलत वर्ड है, हाँ विवेक, विवेक, विवेक कहेंगे. हाँ, अच्छे और बुरे में विवेक होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब विवेक होता है. सो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भक्ति के हिसाब से अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कर्मकांडियों के हिसाब से अच्छा क्या है, बुरा क्या है. सो कर्मकांडियों के हिसाब से अच्छा क्या है, अच्छा वो है, हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ अच्छा पुण्य है शुभ और बुरा अशुभ है पाप है, वो ऐसे चलते हैं. ज्ञानियों के हिसाब से अच्छा बुरा क्या है, ज्ञानियों के हिसाब से क्या अच्छा बुरा, ज्ञान अच्छा है ज्ञान बुरा है, दैट कैन बी सेड लाइक दैट. मोक्ष अच्छा है बंधन बुरा है, ज्ञानी इसमें ही बात करते हैं ना मोक्ष बंधन में, मगर भक्तों के आपसे अच्छा क्या है बुरा क्या है, भक्तों के हिसाब से, हाँ अनुकूल प्रतिकूल, भक्तों के हिसाब से अच्छा वो है, वो हर चीज अच्छी है जो हमें भगवान के पास ले जाए, वो हर चीज बुरी है जो भगवान से दूर ले जाए. अगर वही चीज एक सेकंड पहले भगवान के पास ले जा रही है तो अच्छी है, अगर एक सेकंड बाद भगवान से दूर ले जा रही है तो वही चीज बुरी हो गई, दैट्स ऑल. तो हमारे आपसे अच्छा बुरा, अच्छे बुरे की कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है. मगर महाप्रभु वैसे बता रहे हैं कि अपने एक चैतन्य में लिख रहे हैं कि भक्त के लिए ना कोई अच्छा चीज बुरी है, ना कोई बुरी है, ना कोई बुरी चीज है. भद्र भद्र ए दुई भ्रम, सब भ्रम है अच्छा बुरा, इस संसार का अच्छा बुरा सब भ्रम है. इस संसार की चीज सब कुछ बुरी है, आध्यात्मिक चीज सब कुछ अच्छी है, दैट्स हाउ वी डू थिंग्स. भोग करना बुरा है, सेवा करना अच्छा है. सो इच्छा, क्षमा, क्षमा प्रभुपाद लिख रहे हैं, कंट्रोल ऑफ माइंड, नॉट अलाउइंग द माइंड टू एक्ट विम्सिकली, अपने मन को विम्सिकली एक्ट नहीं करने देना. कहने का मतलब क्या है, हाँ अपने मन को मनमर्जी से काम नहीं करने देना, इसका मतलब क्या है, शास्त्रों धर्म के अनुसार सारे एक्शंस लेना, धर्म को सेंटर में करके एक्शन लो. धर्म क्या कह रहा है, या भगवान को सेंटर में लेके एक्शन लो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी लाइफ में. जैसे राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, हमेशा उन्होंने धर्म को अपने जीवन में रखकर हमेशा डिसीजंस लिए हैं। काय मनसा वाचा, शरीर से कोई भी काम कर रहे हो, मन से कुछ भी सोच रहे हो, वाणी से कुछ भी बोल रहे हो, सोचो कि धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, भक्ति शास्त्र क्या कह रहे हैं, और फिर डिसीजन लो। ऐसे विंसिकली कुछ भी कर देना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं है। ये क्षमा है, क्षमा नहीं है क्षमा। बट एक्चुअली प्रभुपाद, हम पढ़ रहे थे प्रभुपाद एक पर्पट में क्षमा को क्षमा भी कह रहे हैं, फॉरगिव। इसका मतलब फॉरगिव भी हो गया, क्योंकि कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ माइंड है ना। सो आप हाँ क्या कह रहे
हैं?
नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर दो तीन जगह टाइप दो, फॉरगिवनेस कह रहे हैं, प्रॉपरली पढ़ा है मैंने। सो और बात भी ठीक है, यू हैव टू फॉरगिव योर माइंड, दैट्स ऑल, फिनिश, दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर माइंड। भी हम मन हजार चीजें सोच रहे हैं, ठीक है भी फॉरगिव कर दो, चल तू तेरी हैबिट है, मुझे पता है, सोचता रहे तू, एक साइड में बैठ के मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे तंग ना कर, दैट्स ऑल, फॉरगिव, दैट्स ऑल यू हैव टू डील योर माइंड विद, अदरवाइज आप पागल हो जाओगे, माइंड से लड़ नहीं पाओगे, माइंड पे चिल्लाओगे तो वो दोबारा चिल्लाएगा वापस, रुक जा, तू कैसे कह रहे, रुक जा, तू रुक जा, कुछ नहीं कर सकते आप। सो ठीक है, दैट्स ओके, माइंड को फॉरगिव कर दो, माइंड को कहो ठीक है मैंने माफ कर दिया, अब तू भगवान की सेवा कर। भक्ति चंद ये भी कहते हैं झाड़ू जूते मारो, ये भी कहते हैं वैसे कहीं ताड़न, माइंड को मारना भी चाहिए, ये तो नॉनसेंस है, चुप बैठ, ये बैठ। एट द सेम टाइम आप फॉरगिव भी कर सकते हो, भी मार मूर के फिर कहो ठीक है चल, मुझे पता है तूने बहुत गंद किया कई जन्मों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तू भगवान की सेवा, अगर तू भगवान की सेवा में लग जाएगा तो फॉरगिव, नहीं लगेगा तो मैं पीटूंगा, बस ये यही बात है। इस तरह बन सकते हैं, अगर आप पीटते रहो अगर नहीं लग रहा, जब लगने लगे तो ठीक है चलो माफ कर दिया, सारे माफ कर दिए पाप, अब तू लग रहा है गुड, दैट्स ऑल। मगर तपस्वी ज्ञानी माफ नहीं करते, दे डोंट नो हाउ टू फॉरगिव माइंड, वो पीटते ही रहते हैं, तपस्या ही करते रहेंगे, दैट्स ऑल दे आर डूइंग। क्षमा, दमा, दमा मतलब कंट्रोल ऑफ सेंसेस, नॉट अलाउइंग सेंसेस टू एक्ट विदाउट कंट्रोल। आई दो बार नेगेटिव आ गए, अलाउइंग सेंसेस टू एक्ट विद कंट्रोल हो गया, मतलब एक्चुअली बहुत अच्छी प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन लिखी यहां पर, कंट्रोल ऑफ सेंसेस मीन्स नॉट अलाउइंग सेंसेस टू एक्ट विदाउट कंट्रोल। ये बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सेंसेस को अलाउ करो काम करने के लिए मगर कंट्रोल के साथ। दमा मतलब सेंसेस को रोकना नहीं हुआ, सेंसेस को अलाउ कर रहे हैं हम काम करने को मगर कंट्रोल्ड वे में। इसका इसका श्लोक क्या है गीता में, किसी को पता है? सेकेंड चैप्टर 64 राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषय इंद्रिय चरण, चरण मतलब चलाना, विषयों को चलाओ राग और द्वेष से मुक्त होकर। राग द्वेष से मुक्त होकर मतलब यही हो गया, टू एक्ट, नॉट अलाउइंग सेंसेस टू एक्ट विदाउट कंट्रोल, क्योंकि विदाउट कंट्रोल तो तभी होता है ना जब राग और द्वेष में होता है, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद एक्चुअली भगवद गीता के उस वर्स से ट्रांसलेशन ले रहे हैं, कर सकते हो मगर उससे आपको डिराइव करना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट उसी की ट्रांसलेशन है, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषय इंद्रिय चरण, नॉट एक्टिंग अलाउइंग सेंसेस टू एक्ट विदाउट कंट्रोल, सिंपल सिंपल हो गया। दमः, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, नॉट सब्जेक्टिंग एनी लिविंग एंटिटी टू थ्री फोल्ड मिस्ट्रीज। एक्चुअली प्रभुपाद क्या कह रहे हैं अहिंसा की डेफिनेशन, गीता में क्या कह रहे हैं अहिंसा का मतलब क्या है, अहिंसा सत्यम, अहिंसा क्या है, शांतिर आर्जवम, आर्जवम, प्रभुपाद अहिंसा का लिख रहे हैं। अहिंसा मीन्स, अहिंसा का मतलब है प्रचार करना, प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, और एक्चुअली मतलब ही है नॉट सब्जेक्टिंग एनी लिविंग एंटिटी टू थ्री फोल्ड मिजरीज। भाई किसी भी जीव को कोई मिजरीज कैसे कहेंगे, क्लेश, किसी भी जीव को कोई क्लेश नहीं पहुंचाना, वो अहिंसा है। सो कैसे होगा? जब आप उसको भक्ति दोगे, वरना उसको क्लेश मिलते ही रहेंगे। आपकी कोई भी टेक्निक उसको बचा नहीं सकती क्लेश से। नहीं, आप कहोगे हाँ ठीक है, मैं उसको हैप्पी बनाने के लिए टेक्निक्स बना लूंगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो मेथड ही नहीं है। भक्ति से ही वो क्लेश से मुक्त हो सकता है। सो प्रीचिंग इज रियल नॉन वायलेंस। गांधी जी के 3 बंदर अहिंसा नहीं है, वो तो दैट्स रॉन्ग एक्चुअली, दैट इज वो तो बस एक खाली बैठना हो गया। अहिंसा मतलब हो गया कि प्रचार करना। सो ब्रह्मचर्य, प्रभुपाद ब्रह्मचर्य के बारे में पर्पट में लिख रहे हैं, कंटिन्यूइंग और एब्सटेनिंग फ्रॉम मिसयूज ऑफ वन सीमेन, नॉट इंडल्जिंग इन सेक्स विद वुमेन अदर देन वन्स ओन वाइफ, नॉट हैविंग सेक्स विद वन्स ओन वाइफ व्हेन सेक्स इज फॉरबिडन लाइक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचारियों के लिए हो गया, यस, नॉट एसोसिएटिंग विद वुमेन एब्सोल्यूटली, और गृहस्थों के लिए हुए कि अपनी वाइफ को छोड़ के एसोसिएट नहीं करना, वो भी स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में उससे एसोसिएट नहीं करना, अदरवाइज ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। सो गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं इफ दे फॉलो अकॉर्डिंग टू शास्त्रस। वैसे अगर आइडियली ब्रह्मचर्य का मतलब देखें तो ब्रह्म मतलब भगवान, चर्य मतलब उनको फॉलो करना। सो भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ब्रह्मचर्य, और वो इसलिए है क्योंकि भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए बिना काम अग्नि पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए इसको ब्रह्मचर्य बोला गया है। कोई भी और विद्या नहीं है बिना शरणागति के। शरणागति विद्या को छोड़ के कोई भी विद्या नहीं है जो इस काम वासना को खत्म कर सके। तो शरणागति को कहते हैं ब्रह्मचर्य, और क्या कहते हैं? त्याग, गिविंग चैरिटी ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ वन्स इनकम। त्याग, प्रभुपाद त्याग को हाउस होल्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर रहे हैं। यू सी इट्स इंटेलिजेंट वे, क्योंकि ब्रह्मचारियों के लिए तो त्याग है ही नॉर्मल। ब्रह्मचारियों तो पहले त्याग हो गए, उनके लिए त्याग क्या सिखाओगे आप? वो तो घर ही छोड़ के आ गए, और क्या छोड़ेंगे। बट गृहस्थों को त्याग सिखाना होता है, त्यागियों को त्याग थोड़े ना सिखाओगे। सो गृहस्थों के लिए इंपॉर्टेंट है त्याग। और क्या है इंपॉर्टेंट? गिविंग चैरिटी एटलीस्ट 50% ऑफ वन्स इनकम, 50%। हाँ, एटलीस्ट प्रभुपाद एटलीस्ट लिख रहे हैं, मतलब शास्त्रों में तो लिखा है, कोई कर नहीं रहा है इस्कॉन में ऐसा प्रभुपाद की। हाँ, हो सकता, गुजारा नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता क्या? शायद सिटी लाइफ में नहीं हो सकता आजकल, सिटी लाइफ। हाँ, सिटी लाइफ में तो बड़ा मुश्किल है इसके लिए करना, 50% इनकम देना। दूसरी वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो शायद गुजारा नहीं हो। नहीं,
प्रैक्टिकल डिजायर्स ज्यादा है बस।
वैसे डिजायर ज्यादा भी, अगर सिटी लाइफ में डिजायर्स कम कर दो तो हो सकता है,
कम कर दे, एमटीवी कम कर दे, इलेक्ट्रिसिटी कम कर
दे, तो 50% दे सकते हो शायद। मतलब बहुत ज्यादा, वैसे बच्चों के एजुकेशन, दैट्स अ बिग थिंग, बिग चंक
एजुकेशन में भी बेस्ट।
सो हाँ, मतलब थोड़ा मुश्किल है, बट लिखा है कि एटलीस्ट 50% ऑफ वन्स इनकम देना चाहिए। दैट्स त्याग, तब वो त्याग में आएगा। मतलब आपने 100 रुपये, आपने 5 रुपये दे दिए तो त्याग थोड़ा है, वो तो आपने भगवान पे एहसान कर दिया 5 रुपये देकर, उसको त्याग नहीं कहते। सो त्याग होता है जब सैक्रिफाइस कर रहे हो अपने इंजॉयमेंट्स रियल में। तो आपने 50% दे दिया तो आपको डिजायर कम करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली त्याग हो गया वो। मतलब त्याग मतलब इच्छाओं को छोड़ना। अब वो इच्छाओं को छोड़ने के लिए सिस्टम बनाया गया है कि ऑटोमेटिकली अगर आप 50% दोगे तो इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी आपको, हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे प्रैक्टिकल सिस्टम डिजाइंड कि इच्छाएं छूट जाएं, जो कि हाउस होल्डर्स के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वेल, मुझे नहीं मिला नहीं, बट रूपा गोस्वामी तो ऐसे कह रहे हैं। धर्मशास्त्रों में मैंने नहीं देखा है इसको, 50%
देना चाहिए,
10% भी नहीं है, 10% टैक्स है, गवर्नमेंट लेती है, घर सप्तक लिखा 10% देना चाहिए। वेद शास्त्रों में 10% है, 50% नहीं है, वो मैंने देखा नहीं कहीं कोटेशन, बट हमारे आचार्य कह रहे हैं सो कहीं ना कहीं तो होगा, अब वो रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि नाना शास्त्र विचार है नहीं कहीं पुनः वो शास्त्र जानते हैं, मगर मुझे मिला नहीं अभी तक, मे बी सम डिस्कशन कैन बी डन। स्वाध्याय मतलब रीडिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स लाइक प्रभुपाद इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं, रीडिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स लाइक भगवद गीता, भागवतम, रामायण एंड महाभारत, एंड फॉर दोज नॉट इन वैदिक कल्चर रीडिंग ऑफ बाइबल एंड कुरान। ये लिख रहे हैं, वह लिख रहे हैं कि वो स्वाध्याय, अब प्रभुपाद ऐसा क्यों लिख रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक ही है कि सारे ह्यूमैनिटी के लिए बता रहे हैं, नहीं श्लोक ही नारद मुनि बता रहे हैं दीज क्वालिटी शुड बी फॉलोड बाय ऑल ह्यूमंस, सारे ह्यूमंस को फॉलो करनी चाहिए क्वालिटी। अब भाई जो मुस्लिम होगा वो क्या करेगा, कहेगा आपकी तो ये श्लोक ही खराब हो गया, एप्लीकेबल नहीं है। सो एप्लीकेबल है बाइबल और कुरान पढ़ना भी, ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स पढ़ना हो गया। आर्जवम सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम मेंटल डुप्लिसिटी, अंदर कुछ सोचना बाहर कुछ बोलना वो अच्छा नहीं है। संतोष बींग सेटिस्फाइड विद दैट विच इज अवेलेबल विदाउट सीवियर एंडेवर, प्रभुपाल अच्छा लिख रहे हैं, प्रभुपाल कह रहे हैं संतोष मतलब संतुष्टि, संतुष्टि मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे, अति प्रयास नहीं करना किसी भी चीज के लिए, अत्यहारा प्रयासश्च वो नहीं करना, उसको संतोष कहते हैं। हम प्रयास तो करते हैं बट फिर भी हम हमें संतोष रहता है, अननेसेसरी प्रयास नहीं करते, एक्स्ट्रा प्रयास हमारी लिमिट से आधा जो हम कर भी ना पाए। ऑफकोर्स ये संतोष भौतिक जगत के कॉन्टेक्स्ट में का है, आध्यात्मिक जगत में संतोष की कोई बात नहीं होती, आध्यात्मिक जगत में असंतोष ही होना चाहिए भगवान की सेवा में। समद्रिक रेंडिंग सर्विस टू सेंटली पर्संस हु मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लव वन लिविंग विंग एंड अनदर हु सी एवरी लिविंग विंग एज स्पिरिट सोल, दैट्स ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रभुपाद ने मीनिंग लिखा है, ग्राम में यह उपरमा, एक्चुअली मैं महाराज को भी शायद लिख के भेजूंगी अभी, नॉट टेकिंग पार्ट इन सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, जो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद नहीं लिख रहे, प्रॉपर ट्रांसलेशन में इसमें लिख रहे हैं नॉट इन्वॉल्विंग इन टू अननेसेसरी एक्टिविटीज, मगर वर्ड टू वर्ड में लिख में लिख रहे हैं ग्राम में यह उपरमा, ग्राम में मतलब होता है ग्राम में कथा नहीं होता, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को रोकना, और प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। जनरल अगर इसकी ट्रांसलेशन लोगे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब फालतू का प्रचलन नहीं करना, इधर उधर घूमना नहीं, मगर प्रभुपाद कह रहे हैं नॉट टेकिंग पार्ट इन सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, परोपकारी कार्य नहीं करना, इसको प्रभुपाद ग्राम्य कथा कहते हैं। सो महाप्रभु ने जो बोला है सत्यनिवृत्त में ग्राम्य क्या है, क्या है ग्राम्य कथा ना कही वो आर नहीं, ग्राम्य कथा ना बोले वे आर ना सुने वे, ऐसे ही कुछ है। तो वो ग्राम में कथा का मतलब यही हो गया कि फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज नहीं करना, सो सिर्फ प्रचलित नहीं है वो, कि दान पुण्य करना भी प्रचलित है। ग्राम में कथा ना करीबे ग्राम में कथा ना सुनेंगे, ये तो अच्छा है, फिर हमें नहीं सुनना चाहिए फूड रिलीफ प्रोग्राम्स मिड डे मील, और दिस वी शुड राइट, मैं लिख के भेजता हूँ, ये बहुत ही अच्छा कोट है, हमें नहीं सुनना चाहिए इसलिए हम नहीं सुन रहे आपकी बातें। So, not taking part in so-called philanthropic activities, we should not take part. Sir, time waste, gram mein katha hai. Useless work, sir. Ye mujhe bahut interesting laga. Shanai nirnam viparyaya iha iksha mauna. Mauna matlab being grave and silent. Unnecessary cheez nahi bolna, to the point bolna. Aur Bhagwan ke baare mein bolo. विमर्शनम रिसर्च, प्रभुपाद विमर्शनम को रिसर्च लिख रहे हैं, दैट्स फनी। विमर्शनम एक्चुअली मतलब होता है थॉटफुल, अगर वैसे अगर संस्कृत देखो विमर्शनम मतलब होता है थॉटफुल, थिंकिंग, टू थिंक डीपली, हाँ विचार विमर्श कहते हैं हिंदी में, विचार करना, थिंक करना डीपली, मगर प्रभुपाद कह रहे हैं रिसर्च एज टू वेदर वन इज बॉडी और सोल। अब इस पर रिसर्च कैसे करोगे कि आप आत्मा हो या सोल हो, रिसर्च लिख रहे हैं प्रभुपाद, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, रिसर्च, देयर हैज टू बी सम रिसर्च, रिसर्च क्यों लिख रहे हैं, दैट्स वन पॉइंट, यू हैव टू रिसर्च विद इन योर सेल्फ, रिसर्च ही तो है, रिसर्च ही तो है, भूल गए ना, हम सर्च कर रहे हैं ना अपने आप को, हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के लेवल पे काम करना बंद करना पड़ेगा, तब समझ आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। अगर शरीर के लेवल पे काम करते रहोगे तो अन आधे आधे एनीवे। सो आई थिंक दैट्स ऑल। और आखिरी में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हर व्यक्ति को स्मरणम श्रवणम करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, रिमेम्बर करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं समर्पणम करना चाहिए भगवान को, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। मतलब भक्ति करना साधारण धर्म है, भक्ति करना कोई विशेष धर्म नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। प्रभुपाद लिख रहे हैं सबके लिए भक्ति करना कंपलसरी है। इसलिए कई किंग्स होते थे पहले जिन्होंने कंपलसरी करा हुआ था अपने किंगडम में। कृष्णा देव राय थे बहुत बड़े राजा, पता है ना। तो हैदराबाद के राजा तो वो था, कौन था, टीपू सुल्तान। और कृष्णा देव राय उड़ीसा के थे तो उनमें लड़ाई वड़ाई मतलब काफ़ी होती रहती थी। सो बट ही वॉज आई थिंक उसके बाद कृष्णा देव राय बन गए थे, उससे पहले थे बाद में थे पता नहीं, तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश और इसके। सो यानी कृष्णदेव राय टीपू सुल्तान से पहले थे आई थिंक। सो कृष्णदेव राय ने कंपलसरी किया हुआ था अपने किंगडम में भक्ति करना, एकादशी करना, चैंटिंग करना, विष्णु की भक्ति करना, जो नहीं करता था उसको बाहर निकाल देते थे। परीक्षित महाराज ने भी ऐसे किया था, भागवत में पढ़ रहे हैं, एकादशी कंपलसरी की हुई थी। अब आप कहोगे कि ये तो डिक्टेटर्स हैं, नहीं, एक्चुअली दिस इज अकॉर्डिंग टू धर्म, भक्ति कंपलसरी है। इस्लामिक वर्ल्ड में तो है ही नहीं, नमाज पढ़ना कंपलसरी है 5 बार। आप सऊदी अरब में जाओ, आप मना ही नहीं कर सकते। जब नमाज का टाइम होता है हिंदू भी कुछ नहीं कर सकते उस टाइम, वो भी एक कोने में आके बैठ जाए, कुछ आप कर नहीं सकते कि भैया हमें तो ये लोग कर रहे हैं हमें नहीं करना, नहीं, एवरीथिंग स्टॉप्स वहीं स्टॉप हो जाएगा। सो कंपलसरी है वहां पर करना, यू कांट से नो। अब लोग आजकल कहते हैं नहीं, इस्लामिक वर्ल्ड तो डिक्टेटरशिप है, देखो इन्होंने जो कंपलसरी किया, फ्रीडम ही छोड़ी, कंप्लीट नॉनसेंस है। ये साधारण धर्म है, ये कंपलसरी है हर ह्यूमन के लिए। और प्रभुपाद उसका लॉजिक लिख रहे हैं क्योंकि अगर भक्ति नहीं करोगे तो बाकी क्वालिटीज ही नहीं आएंगी, आप कितनी कोशिश कर लो आप ला नहीं सकते उसको। सो भक्ति से ही सारी क्वालिटीज आसानी से आती है, उसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। सो इस तरह से नारद मुनि गाइडेंस दे रहे हैं, और अगर हम इस तरह से करेंगे तो तुष्यति, तब भगवान पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे। वन कैन सेटिस्फाई सिंपली बाय एक्वायरिंग दीज क्वालिफिकेशन, वन कैन सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं प्रभुपाद, वन कैन सेटिस्फाई सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और प्रभुपाद फिर एंड लाइन लिख रहे हैं इस पर्पट की, ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड टेक इट वेरी सीरियसली एंड प्रैक्टिस इट्स प्रिंसिपल्स फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। सो हम ये अच्छे गुण क्यों लाना चाहते हैं, हमें अच्छे गुण क्यों लाना चाहते हैं, अच्छा बनने के लिए नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए और विश्व शांति के लिए, अपने लिए नहीं। इसीलिए रामायण पढ़ रहा था मैं, रामायण में विश्वामित्र है नाम उनका, क्योंकि वो विश्व के मित्र हैं। विश्वामित्र इसलिए फेमस है क्योंकि विश्वामित्र ने बहुत तपस्या की, हमने देखा है नहीं देखा है? कितनी तपस्या करते थे, कितने हजार 60,000 साल तपस्या कर रहे हैं। तो वो किस लिए थे कर रहे थे, विश्व की शांति के लिए कर रहे थे, अपने लिए नहीं कर रहे थे, तभी उनको विश्वामित्र कहा जाता है। इसीलिए राम भगवान विश्वामित्र के साथ गए। अफकोर्स हमें लग रहा है कि विश्वामित्र राम भगवान को लेके चले गए, नहीं, यज्ञ करने के लिए, रामायण शुरू यहीं से हो रही है। मगर वहां पे कमेंटेटर्स यही लिख रहे हैं कि एक्चुअली राम भगवान ने चूज किया विश्वामित्र के जाने को, विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। क्यों बनाया राम भगवान ने, क्योंकि राम भगवान भी मर्यादा स्थापित करने आए थे, और सबसे बड़ी मर्यादा यही है कि विश्व के कल्याण के लिए काम किया जाए। तो विश्व के कल्याण के बारे में सोच के साधना करता है वो ही सबसे बड़ा महात्मा है, वो ही सबसे बड़ा संत है, सारे शास्त्रों में लिखा है, ही इज अ रियल सेंट। तो हम साधना भी अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपने आप को प्योर भी अपने लिए प्योर नहीं बना रहे, एक्चुअली दूसरों के बेनिफिट के लिए बना रहे। और एक्चुअली मैं पढ़ रहा था कहीं पढ़ रहा था मैं किसी स्क्रिप्चर में कि जो अपने लिए साधना करता है उस पर परमात्मा जल्दी खुश नहीं होते, परमात्मा जल्दी उसे वहाँ पे भगवान जल्दी खुश नहीं होते। जो दूसरों के कल्याण के लिए साधना करता है उसको भगवान बहुत जल्दी अपने पास ले बुला लेते हैं, उससे भगवान बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए विश्वामित्र से अट्रैक्ट हुए थे राम भगवान ने स्वीकार किया उनको अपने गुरु के रूप। सो दैट वॉज अबाउट विश्वामित्र। सो हमें भी विश्वामित्र का अनुयायी बनना है, नहीं You have to follow his footsteps, Vishwamitra. Tab Ram milenge. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Kuch puchna, kuch kehna, I'll stop. तो ब्रह्म मतलब भगवान, चर्य मतलब फॉलो करना. सो जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा वो ब्रह्मचारी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ही काम वासना पे कंट्रोल आएगा. भगवान के इंस्ट्रक्शंस छोड़ के काम वासना पे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है. यही शास्त्रों की सारी रूल्स रेगुलेशंस भगवान जो कह रहे हैं, गीता की सारी इंस्ट्रक्शंस. तो सुन तो रहे हो, फॉलो तो कर सकते हो, वो तो पता ही आपको क्या फॉलो करना है. हैव टू फॉलो, दैट्स ऑल.
अगर उसको शास्त्र खुद पढ़े तो ज्यादा मतलब हम मतलब समझ में आएगा, या कई चीज होती है ना लेक्चर में चीज छूट भी जाती है, मतलब
खुद भी पढ़ो. और कौन मना कर रहा है खुद पढ़ने, मगर थोड़ा पढ़ो और उसको डाइजेस्ट करो, फिर थोड़ा पढ़ो उसको डाइजेस्ट करो, वरना कैसे होगा. उसको फॉलो करो ना आप, थोड़ा पढ़ो, सत्य बोलना है ठीक है आप, फिर दो हफ्ते सत्य बोलने की कोशिश करो अपने आप से और दूसरों से. उसको अपने अंदर लेके आओ ना, फिर नेक्स्ट क्वालिटी करो. आप हजार चीज पढ़ लोगे, पहले सत्य पढ़ोगे, एक दिन सत्य करोगे, फिर अगले दिन दूसरा श्लोक पढ़ गया वही अहिंसा, फिर अहिंसा में घुस गए, तीसरा श्लोक पढ़ गया वैष्णव अपराध नहीं करना, फिर उसमें घुस गए, चौथा श्लोक पढ़ गया तपस्या, तपस्या करना शुरू कर दी. यही होता रहेगा, बस किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाओगे. यू अंडरस्टैंड? इसलिए प्रभुपाद ने बोला है कि मैक्सिमम एक घंटा पढ़ना काफी है, और फिर फॉलो करो पूरे पूरे दिन, उसको मनन करो. एक्चुअली यही प्रॉब्लम है इस्कॉन में. इस्कॉन में लोग MP3 चिपका के रखते हैं कान में, सुनते रहेंगे लेक्चर, हजार चीजें आती, कुछ भी नहीं कर पाते. मनन करना बहुत जरूरी है. एक पॉइंट लो, एक घंटा पढ़ो, 40 मिनट्स पढ़ो, और पूरे दिन काम करते करते उसी पे सोचते रहो. खाली दिमाग मत रखो, अब क्लास में सुन लिया, कॉपी में लिख लिया, अब खत्म हो गया. खत्म नहीं हुआ, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग. फिर किचन में आगे उधर जाके ही हाँ हूँ हूँ ये सब चलता जा रहा है, आपकी बात नहीं कर रहा. इस्कॉन में ऐसा होता है. सो ऐसा यू डोंट हैव टू डू, फिर चलते जागते सोते, फिर उस पर मनन करो आप. यस, उसको कैसे अप्लाई करूं मैं, और फिर धीरे 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 आपके ब्लड में चला जाएगा, फिर देन कम टू नेक्स्ट. अदरवाइज क्योस हो जाएगा माइंड में, क्योस, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज होते रहोगे. होता है नहीं होता है ऐसा? तो मैं जब शुरू में आया था इस्कॉन में, मेरा भी ऐसा होता था. मैं पढ़ रहा था तो पहले पढ़ रहा हूँ कि भैया तपस्या करनी, तपस्या करना शुरू कर दिया. फिर पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ा मैंने कि नहीं नहीं अनुकूल लेना चाहिए, प्रतिकूल छोड़ना चाहिए. अब ये क्या करें, ये तपस्या करना बंद कर दिया, फिर अनुकूल प्रतिकूल में घुस गए. फिर पढ़ा कि अभी चैंटिंग में भगवान का नाम भगवान एक है, फिर वो सोचना शुरू कर दिया, ये सब छूट गया. मैंने तो क्योस हो रहा है यार, कुछ भी नहीं रियलाइज हो रहा. मैंने कहा फॉरगेट इट यार, थोड़ा पढ़ो, उसको फॉलो करो, पहले उसको अपने अंदर ले लो, परमानेंट कर लो, फिर नेक्स्ट पे जाओ, फिर नेक्स्ट पे. तब धीरे 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 चीजें बिल्ड होती हैं, वरना बड़ा मुश्किल है, क्योस हो जाएगा बहुत. है नहीं?
बार बार सुन रहे हैं
हम, बार बार सुन भी रहे हैं हम, है नहीं?
एक चीज को बार बार सुनते
हैं. सो फॉलो, कोशिश करो फॉलो करने की, एम्पल अपॉर्चुनिटी है. 23 घंटे फॉलो करने के लिए, 1 घंटे का लेक्चर है, 23 घंटे फॉलो करने के लिए. सो वो अप्लाई करना पड़ेगा ना. ऐसे जैसे मैंने कल, अब आज बात कर रहे हैं हम इतनी सारी सत्य तपस्या, कल हमने बात क्या की थी, क्रोध को कंट्रोल करने की, और फॉरगिव करने से वो कैसे इंस्ट्रक्ट करना है लोगों को. तो वो अप्लाई करो, आप बोलोगे तो सही ना लोगों को, उसको ध्यान रखो कि कैसे बोलना है. उसको एक हफ्ते तक अप्लाई करो अभी, फिर परमानेंट चला जाएगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, और सुनते रहियो, ये लिखते रहो बस. दैट्स ऑल, टेक्स टाइम. जो धीरे चलेगा वो जीतेगा. खरगोश आ रहा था या कछुआ आ रहा था? खरगोश आ रहा था, चल चल के, चल चल के. तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, ये लोगों का एक्सपीरियंस है. अगर आप हमारे एक्सपीरियंस से नहीं चलोगे तो ठोकर खाओगे बस, दैट्स ऑल. चाहे आपको लगे कि बहुत पढ़ना है, जल्दी पढ़ लूंगा, नहीं होगा. आप एक रात में परमहंस नहीं बन पाओगे, मतलब कोई भी, सब लोग यहाँ बैठे हैं. स्लो एंड स्टडी चलते रहो, तो सेवा आपको मौका देगा उसको अप्लाई करने का. चलते रहो, बहुत कुछ सीख कर कुछ भी रियलाइज नहीं होने से अच्छा है कम सीख के ज्यादा रियलाइजेशन आ जाए, क्योंकि अगले जीवन में रियलाइजेशन ही तो जाएंगी, नॉलेज के पॉइंट्स थोड़े ना जाएंगे, क्या करो यार, कुछ नहीं समझ आएगा।
तो जो मतलब जैसे जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो तो यही वही सोच सकते हैं ना, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि नया डिवोटी आया
नया डिवोटी शायद ऐसा नहीं सोच पाएगा कि साधना दूसरों के हित के लिए करनी है। नया डिवोटी तो भी कहेंगे भाई कर ले साधना, अपना माइंड कंट्रोल कर लो, अपना तो हित कर लो पहले।
लेकिन पुराना डिवोटी भी अगर देखा जाए वो भी मतलब ये पॉइंट काफी बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मध्वाचार्य बचपन में घर से निकल गए, मैं संसार को उद्धार करूंगा इसलिए साधना करूंगा, ये तो बहुत ही हायर पॉइंट है। हम दूसरों मतलब साधना अगर हम
वेल प्रभुपाद कह रहे हैं इस पर्पज में प्रभुपाद कह रहे हैं वन शुड डेवलप दिस क्वालिटीज फॉर द पीस ऑफ वर्ल्ड। तो अपने लिए तो कोई करता ही नहीं साधना, अपने लिए करना तो स्वार्थी हो गया, वो तो नियोफाइट प्लेटफॉर्म है, मध्यम अधिकारी अपने लिए नहीं करता है ना, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। हम मिक्सड हो सकता है उसका, मगर अपने लिए नहीं है, मेन चीज़ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए हाँ प्योर हो जाएगा धीरे धीरे।
आपने विश्वामित्र का एग्जांपल दिया था, तो विश्वामित्र वो मतलब हम भक्ति में नहीं रहते, वो तो तपस्वी मानते हैं, तो वो विश्व की शांति के लिए कैसे करते?
विश्वामित्र शुरू में प्रतिथि थे फिर डिवोटी बन गए थे, शुरू में जब वो जो वशिष्ठ से लड़ाई हो रही थी ना उनकी, तब उनको ब्रह्म ऋषि बनना था, बट एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट अ डिवोटी फ्रॉम बिगनिंग एज यू नो फ्रॉम हिस्ट्री, ही वॉन्टेड टू बिकम ब्रह्म ऋषि, किंग थे ना पहले, क्षत्रिय थे, पूरी हिस्ट्री पता है, लड़ाई करने लगे, फिर उनको फिर अकल आ गई, फिर वो डिवोटी बन गए।
60,000 साल बाद जब वो अट्रैक्ट भी हो गए थे
हाँ, वो सब पता नहीं, वो तपस्या पता नहीं किस, वो पता नहीं कब का इंसिडेंट है, मुझे नहीं पता, बट प्रॉबली मे बी उसी टाइम का इंसिडेंट को जब वशिष्ठ से लड़ाई हो रही थी, बट एनी वे वही, बट एनी वे उन्होंने एक बार नहीं किया 60,000 साल तपस्या, कई बार की है, एक बार नहीं की है, कई बार करोड़ों करोड़ों साल बैठ गए समाधि में।
पॉइंट ये भी पूछा था कि तपस्या से कैसे विश्व शांति हो गया, भक्ति से तो हो रही है,
तपस्या विश्व शांति हो रही है। विश्वामित्र ने तपस्या करके गायत्री मंत्र प्रकट किया है संसार में, गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, तो गायत्री मंत्र करके सब लोग प्योर हो गए, तो वैदिक मंत्र के दृष्टा हैं विश्वामित्र, वे वेद लेके आए संसार में, इतने बड़े ऋषि हो गए वो, एंड देन ही प्रोपोगेटेड दैट नॉलेज। तो विश्वामित्र सो हम भी कर सकते हैं, हम प्रीचिंग तपस्या ही है, हम जो चैंटिंग कर रहे हैं अपने को प्योर कर रहे हैं प्रीचिंग करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, हम ही प्योर नहीं होंगे तो दूसरे को उठाएंगे कैसे, उठा ही नहीं सकते उसको, थ्योरी से कौन उठा सकता है, कोई नहीं उठा सकता थ्योरी कैसे, इम्पॉसिबल है। विश्वामित्र गुरु पता नहीं मुझे कौन थे, विश्वामित्र गुरु अचिंत्य पता नहीं मुझे कौन, ओके
okay.
क्या
फूड डिस्ट्रीब्यूशन
टू ऑल कहाँ लिखा है, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, लेट्स सी, चैंटिंग हेयरिंग प्रभुपाद, फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड इक्वली टू ऑल लिविंग एंटिटीज, प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड इक्वली टू ऑल लिविंग एंटिटीज, वेल इस प्रॉपर्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, बट प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड नहीं है, सो दो चीज़ें कॉन्ट्रोडिक्टी हो रही है इसी में, ये अच्छा बताया, बिकॉज अगर हम आई थिंक महाराज को ये भी पॉइंट लिखना पड़ेगा कि आगे ये भी आ रहा है, इसको कैसे हम हार्मोनाइज करें, प्रभुपाद कह रहे हैं ग्राम्य कथा मतलब फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, खाना वाना बांटने में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे फिर नारद मुनि लिख रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं वहाँ पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड आई थिंक वही लिख रहे हैं, distributing food equally to all living entities.
Of food and drink. Equal distribution being different.
I think a philanthropic activity नहीं है ये. मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे पहले जमाने में जो खाते नहीं थे हम लोग,
धर्म के अनुसार हो गया।
हाँ, ये धर्म का, ये फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि जैसे पहले पहले जमाने में खाते थे तो कौए के निकाल दिया, थोड़ा सा निकाल दिया, अपना दे दिया बस। एक ऐसे ऐसा नहीं कि समाज सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा दैट वॉज नॉट द पॉइंट हियर। क्योंकि यहाँ पे मैन एंड एनिमल्स भी लिखा है, सो आई थिंक वी हैव टू इंटरप्रेट लाइक दैट, अदरवाइज कैसे समझोगे आप। फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी तो आपने गोल ही बना लिया समाज को फूड बांटने का, हमने गोल का बनाया है। हाँ भाई, हमारे घर में जो एक्स्ट्रा है गृहस्थ ने, उन्होंने गाय को दे दिया, चलो भैया, डॉग को दे दिया स्ट्रीट पे, और क्रोस को दे दिया, चलो भी बाजरा थोड़ा, तो वो तो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी थोड़ा ना है, दैट्स ओके। उस लेवल पे सोचना पड़ेगा, कोई गोल नहीं है लाइफ का, जो मिड डे मील और इन्होंने गोल ही बना लिया मूवमेंट का, वो गोल थोड़े ना, तो लाइक दैट वी कैन अंडरस्टैंड। फ्री हॉस्पिटल क्या कह रहे हो? फ्री हॉस्पिटल क्या, समझ नहीं आ रहा क्या है वो? हाँ मतलब, हाँ मेडिकल फैसिलिटीज है ना, कर रहे हैं इसको हम फ्री, मतलब कर रहे हैं फ्रैंकली, आई मीन टू से, नहीं नहीं फूड फॉर, नहीं नहीं मिड डे मील्स दे रहे हैं, फूड ऐसे ही बांट रहे हैं, फूड फॉर मिड डे मील्स दे रहे हैं, वो गलत है। विदाउट गिविंग वो बता भी नहीं रहे कि डिवोटीज दे रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ भी नहीं कर रहे, वो खाना दे रहे हैं, वो गोल नहीं है ना प्रभु लाइफ का हमारा। एक कुत्ते को खिला दे, सारे कुत्ते को थोड़ा ना खिलाए फिर रहे हैं, वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी नहीं हुई ना फिर तो। हाँ भाई, आपके पास जो प्रसाद बचा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो मैन और एनिमल्स, इतना है बस। कोई ये नहीं कह रहे कि मतलब आप गोल बना लो उसको। हाँ, ऑफर करके, ऑफ कोर्स ऑफर भी, क्योंकि लास्ट आइटम है डिवोशन, वो तो चलो वो भी कह रहे हैं ऑफर करके, नहीं नहीं वो तो फूड मिड डे मील में वो ऑफर करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रसाद, वो कह रहे हैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वो बता थोड़े ना रहे उसको ये प्रसाद है, उसको पता ही नहीं लग रहा, तो वो तो सिर्फ सुकृति दे रहे हैं, हमारा मूवमेंट सुकृति देने के लिए थोड़े ना सर, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। प्रसाद असर मतलब आप दे दो उसको, खिला दो उसको, ये भी नहीं पता प्रसाद, उसको ये भी नहीं पता कि क्या मतलब, इस्कॉन तिलक भी नहीं लगा के जा रहे, कुछ है ही नहीं, फंडा ही नहीं है कुछ, कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है, कुछ टीचिंग्स भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अज्ञात सुकृति टाइप की है। ये क्या है, ये क्या महाप्रभु ये देने आए हैं मतलब और वो भी अज्ञात सुकृति दे सकते हैं, मगर वो मूवमेंट का गोल ही हो गया, दैट्स वेरी मूवमेंट का गोल है प्रेम। अज्ञात सुकृति आप ऐसे दे सकते हो, कुत्ते को खिला सकते हो ऐसे ही, मगर वो मूवमेंट का एम ही, वो तो बहुत ही अजीब सा हो गया ना, गोल थोड़े ना है और क्या। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं वो ये नहीं कर रहे, स्कूल्स में किसी को भी नहीं पता है इस्कॉन है, गवर्नमेंट को पता है बट बच्चों को, किसी टीचर को कुछ भी नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, और ना इस ड्रेस में जा रहे हैं, नॉर्मल कर्मीज आके देते हैं, बनाते भी कर्मीज हैं मतलब, और बट ऑफकोर्स हाइजीनिक है, दैट्स द पॉइंट दे आर क्लेमिंग और दे रहे हैं बस, दैट्स कि हम गरीब बच्चों को खिला रहे हैं क्योंकि खाना नहीं है उनके पास। प्रोपेगेंडा ये है कि जो खाना नहीं है हम बच्चों को खाना दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि खाना नहीं मिलता। सो ये बहुत अजीब सा प्रोपेगेंडा हो गया, नहीं मतलब लोग अब हमें जान रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन ये है जो बच्चों को खाना खिलाती है, अब हमें इस तरह नहीं जान रहे कि इंस्टीट्यूशन है जहां पर हमें प्रेम प्रेम मिलेगा, बिल्कुल मिस प्रीचिंग हो गई, इट्स रॉन्ग ना। नाउ पीपल कम टू, अच्छा महाराज भी कह रहे थे मीटिंग में कि पता नहीं कौन तो भोपाल में वो डिवोटी कह रहे थे ना हमारे गॉड ब्रदर कि एक आदमी आया तो कह रहा था आपको पैसे देना, उन्होंने क्यों, क्योंकि आप स्कूल्स में खिलाते हो ना, आपकी संस्था खिलाती है, तो उनसे बिठा के बताया भैया हम ये नहीं करते, हमारा गोल नहीं है ये, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, दे आर बिग प्रॉब्लम्स। हो सकता है बट दैट दे आर नॉट प्रोपोगेटिंग लाइक दैट, मे बी कहीं कहीं ऐसा कर रहे हो,
और
But what's the message? Message क्या है?
मैंने वीडियो देखी थी उसमें बड़े-बड़े प्लांट्स हैं और
वो मैंने भी देखा
कॉर्पोरेट कितने ही चला रहे
हैं वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें तो फिर ब्रह्मचारी साथ में जा रहा
है अच्छा डॉक्यूमेंट्री में हां बट द पॉइंट इज अगर वो कर भी रहे हैं तो पॉइंट क्या है उसका मतलब का मैसेज कहां है देयर इज नो कोटेशन लाइक दैट वेयर इज एविडेंस देयर इज नो एविडेंस There's no people are saying so many things actually quote misquoting Prabhupada. I didn't read. Do you have the evidence for that? Yeah, it is hearsay, na? सुन के बातें बहुत चल रही हैं सुन के बातें and Prabhupada के name पे लोग गलत चीजें बोल रहे हैं और हो सकता है out of context निकाल के बोल रहे हैं. कई Prabhupada ने कुछ context में कुछ बोला होगा एक context में निकाल के हो गया ऐसे तो Prabhupada ने ये भी बोला है कि the most important activity in Krishna consciousness is Govinda restaurant. तो अगर हम गोविंदा रेस्टोरेंट खोलने लगे सब कुछ बंद कर दें सो दैट्स इन अ कॉन्टेक्स्ट अब ये एविडेंस मुझे पता नहीं बट होगा भी तो यू हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट क्योंकि ऑफ कोर्स इवन बुक्स कैन फेल दैट इज अ बिग स्टेटमेंट क्योंकि प्रभुपाद का पूरा मूवमेंट ही बुक्स के बेसिस पे है प्रभुपाद ने तो बोला भी टेम्पल भी खत्म कर दो बुक्स होनी चाहिए नहीं प्रभुपाद वॉज आफ्टर बुक्स सो दीज थिंग्स आर रियली प्रॉब्लमैटिक वी डोंट टेक इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बट हमारा मूवमेंट को लोग गलत तरीके से जानने लगे हैं हमारे मूवमेंट को लोगों को माइंड में होना चाहिए कि भी अगर हमें प्योर डिवोशन चाहिए प्रेम चाहिए तो इस्कॉन के पास जाओ अभी हो रहा है कि हमें खिचड़ी चाहिए तो इस्कॉन के पास जाओ दैट्स अ वेरी बैड थिंग सब लोग सोचने लगे हैं सो दैट्स अ प्रॉब्लम इनफैक्ट हम कह नहीं रहे थे हम मैंने अलवार को कोट नहीं किया था कल दैट वॉज मैंने मनाज को भी लिख के भेज दिया तो वो तो ये कह रहे हैं कि भैया हाउ हार्टलेस दीज पीपल आर हु आर नॉट डूइंग डिवोशन टू माय लॉर्ड आई विल स्नैच देयर फूड एंड गिव टू डॉग्स ये प्योर डिवोशन है हम तो उनसे खाना छीन के कुत्तों को डाल देंगे तुम लोग मरो यार हमें क्या लेना देना तुमसे प्रभुपाद ने ये भी कहा ना कि वो डीमेंस सारे डीमेंस हैं उनसे पैसे लेके भगवान की सेवा में लगाओ ये तो कहा सुने लक्ष्मी लेके तो फिर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो भूखे मरेंगे और क्या होगा That's a problem, you know. Love and care, yes. So bring them to Krishna. Bring them, give them devotion.
But at that particular point of time, their necessity is they need something.
What they need?
Like if some natural calamity is there, they need food. If you provide them,
we will fall down in that part. हम ही हमारा फॉल डाउन हो जाएगा क्योंकि किसी भी आचार्य ने ऐसा किया नहीं ना मतलब ठीक है किसने किया हिस्ट्री में मतलब चलो एक बात बता दो रामानुचार्य मध्वाचार्य प्रभुपाद भक्ति शांता भक्ति क्या उस टाइम भूखे लोग भूकंप नहीं आता था क्या इस टाइम सूखा नहीं पड़ता था क्या पड़ता था प्रभुपाद के टाइम प्लेग फैला था भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम कलकत्ता में सो भक्ति विनोद ठाकुर तो नहीं कह रहे थे बेचारे मर रहे हैं मेडिसिन लेके घूम रहे हैं उन्होंने कहा चैंट और उन्होंने आर्टिकल लिखा इफ यू डोंट चैंट यू विल डाई इफ यू डोंट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा प्लीज टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा दे वर नॉट इंटरेस्टेड एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स तो कोई एविडेंस भी नहीं हमारे पास कोई आचार्य करके भी नहीं दिखा रहा तो बल्कि आचार्य तो उल्टा ही कह रहे हैं सो हम क्यों ये चीजें करने लगे अब बल्कि हम तो आचार्य भी नहीं हम तो हमारा सब डिबेट हो जाएंगे फॉल डाउन हो जाएगा मैसेज खो जाएगा अगर कहीं किसी ने किया होता तो हम कर लेते कोई किसी ने किया भी तो नहीं किसने किया है अब किसी भी हमारे गोस्वामी ने मतलब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहे थे ब्रजवासियों को कौन दे रहा था मगर हम लोग दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं क्या गोस्वामियों को नहीं क्या उनके पास कंपैशन नहीं था क्या उस टाइम अंधे नहीं होते थे क्या लोग उस टाइम बीमार नहीं होते थे तो गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी कहते रूपा गोस्वामी से यार एक आयुर्वेदिक क्लिनिक थोड़ी सी छोड़ बैठ जाओ थोड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे ब्रजवासी तो रूपा गोस्वामी भी आयुर्वेदिक Rupa Goswami was, he knew all these things. That's why I'm saying he was intelligent. He was minister. He knew this knowledge. But they were not using this knowledge. Forget it. There's no time. Hamara message clear hona chahiye, otherwise problem ho jayegi. Kisi ne, what about Christ? Jo Christians, jo itna love aur itna baat karte hain, Christ kya keh raha hai Bible pe? Ki I have not come to propagate love. I have come to bring, I have come to, kya hai? I have come to make people fight. I've come to bring make brothers and brothers fight, father and son fight. I've come with a sword, not with love. उनके मसीहा कह रहे हैं, जहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है लव का वेस्टर्न वर्ल्ड से, आई हैव सीन इन अमेरिका, दिस कॉन्सेप्ट इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, मुझे रियलाइज हो रहा है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स है इस चीज का. सो अननेसेसरी डायरेक्शन है. तो उनके ही मसीहा कह रहे हैं कि भैया मैं तो लड़वाना आया हूं. सो अब कहोगे यार ये क्या चीज हो रही है, बट एट द सेम टाइम ही वॉज सेइंग लव गॉड. सो ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर दैट इस वर्ड का जो लव है that doesn't have any value. जब भगवान को लव नहीं करोगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, डिविएशन आ जाएगी. तो धीरे धीरे डिविएशन आ जाएगी. यही तो इश्यू चल रहा है इस कॉन में बहुत बड़ा. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट टू डू. ये पॉइंट आ गया ग्राम में, कथा लोग लिखेंगे आप लिख के भेजूंगा. क्यों आपको, आप लोगों की ओपिनियन है, व्हाट डू यू से ऑल ऑफ यू. मुझे तो पर्सनली मुझे ऐसा पर्सनली मुझे भी लगता है और कहीं इस्कॉन डिवोटीज को भी लगता है, और फाइट भी चल रही है. दो कैंप्स बने हुए हैं इस्कॉन में, बहुत बड़ी फाइट चल रही है क्योंकि इस्कॉन डिविएट हो रहा है, 100% डिविएट हो रहा है. ये हमारा एजेंडा है ही नहीं, दिस नॉट आवर एजेंडा. मतलब हम लोग यहाँ प्योर डिवोशन के लिए आए थे और हमें सुनने को मिल रहा है. अच्छा मान लीजिए, चलो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मिड डे मील शुरू करते हैं, ठीक है सपोज, और फिर हम आप लोगों से बोले चलो खिचड़ी बनाओ पूरे दिन, हमें स्कूल में बांटनी है, तो करोगे आप? ओके यार ये क्या है, स्कूल में हम पूरे दिन खिचड़ी बना रहे हैं, स्कूल में बांटे जा रहे हैं, तो मैं तो नहीं करूँगा. मैं क्यों करूँ यार, मैं यहाँ पे भक्ति करने आया हूँ, ये करने आया हूँ या खिचड़ी बांटने आया हूँ गरीब. मतलब पर्सनली अगर अपने पे लेके तो हम थोड़े ना करने वाले हैं सारी चीज़ें. सो इट सीम्स फनी. हाँ, अगर ये किया जाए तो बहुत अच्छा है कि भी हम खिचड़ी दे रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, लेक्चर हो रहा है, उनको समझा रहे हैं कि ये प्रसाद है, ये खिचड़ी नहीं है, भगवान का प्रसाद लो, तब परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो करना ही चाहिए. मगर ये बिल्कुल अजीब हो रहा है, ना बता रहे हैं प्रसाद है, ना कोई कीर्तन कर रहे हैं, और जो लेने वाला उसको लग रहा है हम खिचड़ी खा रहे हैं बस, टीचर को भी खिचड़ी खा रहे हैं, गवर्नमेंट भी सोच रही है खिचड़ी बांट रहे हैं, दैट इज रॉन्ग ना. सो ये बड़ा फनी हो रहा है. वैसे करें तो बर्फ चाहिए, अच्छा हम भी करते हैं. सो फूड फॉर लाइफ तो यही है ना, मतलब जाके कीर्तन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, लोगों को बोलते हैं प्रसाद दो, तो वो श्रद्धा से लेते हैं प्रसाद, तब उसको भक्ति मिल रही है, तब फिर लोगों को लगता है हाँ यार ये भगवान का काम कर रहे हैं. यस गुड, दैट इज अ गुड थिंग, दिस इज बैड. ओके सो दैट्स इट. भगवान का नाम लेके भगवान का स्मरण तो आ रहा है, वहां खिचड़ी खा के उसको स्मरण ही नहीं आ रहा भगवान का, कि उसको बताया ही नहीं जा रहा प्रसाद है. प्रॉब्लम यह है ना, उसको बताया नहीं रहे ना, वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वहां पे क्रिश्चियन भी है मुस्लिम भी है, तो उनकी प्ली है कि अगर हम बता देंगे प्रसाद है तो गवर्नमेंट से फंड्स नहीं आएंगे, गवर्नमेंट कहेंगे आप रिलीजियस चीज फैला रहे हो, इसलिए बता नहीं रहे, वो लीगल इम्प्लीकेशंस हो जाएंगी. तो लीगल इम्प्लीकेशन तो कर ही क्यों रहे हो भी, तो बताओ प्रसाद है, गड़बड़ है ना वो. सो दैट्स अ प्रॉब्लम देयर. अब पता है मुझे, आई नो दैट इज अ वेरी बैड स्टोरी दैट्स कॉन्कॉक्टेड, एंड इनफैक्ट पता ही ये हो रहा है आपको, यू नो दैट कि स्टोरी क्या आ रही है, मतलब स्टोरी लिख के भेज रहे हैं कि एक बच्चा था, वो उसने खाना भीख मांगी, उसके पास खाने को नहीं था, उसकी आंखों में आंसू आ गए, तब उसकी मदद कीजिए. ऐसे फंड्स कलेक्ट किए जा रहे हैं लोगों से, इस्कॉन कर रहा है कलेक्ट ये लेटर्स भेज भेज के, कंपैशन और अननेसेसरी कंपैशन, ये क्या है, ये सब क्या है, ऐसे ये सब थोड़ा ना करने आए हैं हम डिवोटीज. प्रभुपाद ने कहा प्रसाद, अब प्रभुपाद ने वो धाम में बोला है, हर जगह नहीं बोला. इफ यू रीड केयरफुली, नो प्रभुपाद ने कहा धाम में, प्रभुपाद ने कहा धाम स्पेसिफिकली, इट्स ओनली फॉर धाम. That instruction is for dham, specifically for Mayapur it was at that time. So that's also thing to be kept in mind. Okay, so it's a debatable issue, but it's a issue. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.